अध्याय 5 मीराबाई की प्रेम साधना खंड 1। मीराबाई के भजन गुजरात से लेकर बिहार तथा मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब पर्यंत प्रायः सब कहीं बड़े प्रेम के साथ गाए जाते हैं। जिस प्रकार मैथिल कोकिल विद्यापति को उनके पदों के कारण हिंदी तथा बांग्ला भाषा भाषी दोनों एक समान ही सम्मानित किया करते हैं, उसी प्रकार मीराबाई की भी गणना हिंदी तथा गुजराती के श्रेष्ठ भक्त कवियों में की जाती है। परंतु सब कुछ होते हुए भी अनेक अन्य प्रसिद्ध कवियों की भांति मीराबाई का भी समय निश्चित करने में बहुत कुछ मतभेद है। यहाँ तक कि एक दल यदि उनका जन्म समय सन 1403 ईस्वी में ठहराता है तो दूसरा उसी घटना को सन 1516 ईस्वी तक ले जाता है। स्वयं मीराबाई ने अपने सांसारिक जीवन के विषय में कुछ नहीं कहा है। हाँ, उनकी रचना समझे जाने वाले नर सी जी का मायरा नामक ग्रंथ में केवल इतना प्रसंग आया है, छत्रो वंश जन्म मम जानो नगर मेढ़ते बासी, नरसी को जस बरन सुनाओ नाना विधि इतिहासी, और कोमंडल को देश बखान संतन के जसवारी, को नरसी सो भयो कौन विध कहो महिराज कुमारी। हवे प्रसन्न मीरा तब भाख्यो सुन सखी मिथुला नामा, नरसो को विध गाय सुनायु सारे सब ही कामा। इससे केवल इतना ही विदित होता है कि मीराबाई मेड़ता नगर निवासी किसी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई थी तथा महिराज कुमारी पद से यह भी अनुमान हो सकता है कि उपर्युक्त क्षत्रिय कुल कोई राजकुल अवश्य रहा होगा। किंतु न तो इसे मीरा के समय का पता चलता है और न यही ज्ञात हो पाता है कि उनके पूर्वज व वंशज कौन थे अथवा उनका वैवाहिक संबंध कहां और किसके साथ हुआ था। राजस्थान का इतिहास लिखने वाले कर्नल टॉड ने जनश्रुतियों के आधार पर और विशेषकर राणा कुंभकर्ण के शिवालय के पास मीराबाई का मंदिर देखकर तथा साथ ही कदाचित राणा कुंभा की साहित्यिक योग्यता और मीरा की काव्य शक्ति में कुछ साम्य की कल्पना करके भी लिखा है। अपने पिता की गद्दी पर 1491 ईस्वी में बैठने वाले राणा कुंभा ने मारवाड़ के मेड़ता वंश की कन्या मीराबाई से विवाह किया था, जो अपने समय में सुंदरता तथा सच्चरित्रता के लिए बहुत प्रसिद्ध थी और जिसके रचे हुए अनेक प्रशंसनीय गीत अभी तक सुरक्षित हैं। हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि मीरा को यह काव्य कौशल अपने पति से प्राप्त हुआ था। कर्नल टॉड की इस सम्मति के प्रभाव में आकर बहुत से लेखकों और विशेषकर गुजराती साहित्य के इतिहासज्ञों ने मीराबाई का समय ईसा की 15वीं शताब्दी में निर्धारित किया है। प्रसिद्ध गुजराती विद्वान स्वर्गीय गोवर्धन रॉय माधव राय त्रिपाठी ने इस मत का समर्थन किया है और कृष्णलाल मोहनलाल झवेरी ने इस विषय पर विचार करते हुए मीराबाई के जन्म तथा मरण का भी समय निश्चित कर लिया है। झवेरी महोदय के मत से मीराबाई के जीवन काल के विषय में मतभेद होते हुए भी सन 1403 ईस्वी के आसपास समय उनके जन्म के लिए साधारणतया निश्चित है। उन्होंने मीरा का 67 वर्षों तक जीवित रहना तथा सन 1470 ईस्वी मर जाना भी बतलाया है। इसी प्रकार हिंदी साहित्य के प्रथम भारतीय इतिहास लेखक स्वर्गीय ठाकुर शिव सिंह ने भी अपने सरोज में मीराबाई का हाल चित्तौर के प्राचीन प्रबंध को देखकर लिखा है और वे भी ये भी कहते हैं कि मीराबाई का विवाह संवत 1470 अर्थात सन 1413 ईस्वी के करीब राणा मोकल देव के पुत्र राणा कुंभकर्ण सिंह चित्तौर नरेश के साथ हुआ था। अतएव उपर्युक्त मतानुसार मीराबाई के आविर्भाव का काल ईसा की 15वीं शताब्दी से आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखता, परंतु जैसा ऊपर कहा गया है कर्नल टॉड की सम्मति अधिकतर अनुमान अथवा जनश्रुतियों पर ही अवलंबित है। राणा कुंभा की विद्वत्ता के कारण उनकी स्त्री का भी विदुषी होना आवश्यक नहीं। न मीराबाई का मंदिर नाम पढ़ने के कारण कोई मंदिर जिसे पीछे मीराबाई की नित्यशः उसमें कीर्तन आदि करने के कारण भी ऐसा नाम दिया जा सकता है। मीराबाई ही द्वारा निर्मित किया हुआ कहा जाएगा। वास्तव में यह महाराणा कुंभा का निर्माण कराया हुआ विष्णु के वराह अवतार का कुंभ स्वामी कुंभ श्याम नामक भव्य मंदिर है, जिसको भ्रम से मीराबाई का मंदिर कहते हैं। फिर यदि नरसी जी का प्रसिद्ध मायरा मीराबाई की ही रचना कही जाती है और झवेरी महाशय के मतानुसार नरसी मेहता का समय सन 1415 ईस्वी से सन 1481 ईस्वी तक निश्चित है, तो ऐसी दशा में मायरे के अंतर्गत मीरा का अपने समय के प्रमुख भक्त नरसी मेहता के विषय में को नरसी सो भयो कौन विध कहो महिराज कुमारी के समान प्रश्नों का उठाना अस्वाभाविक सा जान पड़ता है। इसके सिवाय मीराबाई मेड़तणी कहलाती है, जिसका अभिप्राय यह है कि वे मेड़ता के राजकुल की कन्या थी। मेड़ता का अधिकार जोधपुर के राव जोधाजी के चतुर्थ पुत्र दूदाजी ने मुसलमानों को परास्त कर विक्रम संवत 1518 सन 1461 ईस्वी में प्राप्त किया। राव दूदाजी के ज्येष्ठ पुत्र वीरम देव जी का जन्म विक्रम संवत 1534 सन 1477 ईस्वी में हुआ। मीराबाई वीरम देव जी के कनिष्ठ भ्राता रत्न सिंह की पुत्री थी। महाराणा कुंभा जी का विक्रम संवत 1525 सन 1468 ईस्वी में देहांत हो गया। महाराणा कुंभा जी के देहांत के 9 बरस बाद मीराबाई के पिता के बड़े भाई वीरम देव जी का जन्म हुआ। अतः मीराबाई का महाराणा कुंभा जी की रानी होना सर्वथा असंभव है। जोधपुर के स्वर्गीय मुंशी देवी प्रसाद मुसीफ ने 15वीं शताब्दी वाले मत की विद्वत्तापूर्ण आलोचना करके मेवाड़ मारवाड़ और मेड़ते की तवारीखों के आधार पर यह निश्चित किया है कि मीराबाई मेड़तिया राठौर रत्न सिंह जी की बेटी मेड़ते के राव दूदा जी की पोती और जोधपुर के बसाने वाले राव जोधा जी की पड़ पोती थी। इनका जन्म गांव चौकड़ी में हुआ था जो इनके पिता की जागीर में था। ये संवत 1573 सन 1516 ईस्वी मेवाड़ के मशहूर महाराणा सांगा जी के कुंवर भोजराज को ब्याही गई थी। मुंशी जी के इस निश्चय को मान लेने में इधर के किसी लेखक ने आपत्ति नहीं की है। केवल मिश्र बंधुओं ने न जाने किस प्रमाण का आश्रय लेकर संवत 1573 को मीराबाई का जन्म समय बतलाया है। मुंशी देवी प्रसाद ने मीराबाई का मृत्यु समय संवत 1606 सन 1549 ईस्वी माना है, किंतु बेलवेडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित मीराबाई के शब्दावली के संपादक ने इस मंतव्य को एक भाट की जुबानी स्थिर किया हुआ कहकर भक्तमाल में दिए हुए मीराबाई के साथ अकबर बादशाह एवं तानसेन की भेंट तथा गोस्वामी तुलसीदास के पत्र व्यवहार से संबद्ध प्रसंगों के कारण लिखा है कि हमको भारतेंदु श्री हरिश्चंद्र जी स्वर्गवासी का अनुमान कि मीराबाई ने संवत 1620 और 1630 विक्रमी अर्थात सन 1563 और 1573 ईस्वी के दरमियान शरीर त्याग किया ठीक जान पड़ता है। जैसे कि उन्होंने उदयपुर दरबार की सम्मति से निर्णय किया था और कवि वचन सुधा की एक प्रति में छापा था, मुंशी देवी प्रसाद ने मीराबाई के जन्म का कोई समय निर्धारित नहीं किया था। अतएव उपयुक्त संपादक महाशय ने इस काल को भी संवत 1555 एवं 1560 अर्थात 1498 एवं 1503 ईस्वी के बीच माना है, परंतु संपादक महाशय द्वारा माने हुए मृत्यु तथा जन्म संबंधी उपयुक्त समयों के विषय में भी आपत्ति किया जाना संभव है। कहा जाता है कि मीराबाई ने अपनी ससुराल में अपने भक्ति भाव के कारण छोड़े जाने पर ही घबरा कर गोस्वामी तुलसीदास जी से पत्र व्यवहार किया था। मीराबाई को इस प्रकार के कष्ट संपादक महाशय के भी अनुसार उनके देवर महाराणा विक्रमाजीत ने दिए थे। महाराणा विक्रमाजीत सिंह अपने बड़े भाई महाराणा रत्न सिंह के मरने पर सन 1531 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। फिर कुछ वर्षों तक राज्य करने के उपरांत ही बनवीर ने उन्हें मारकर राजगद्दी छीन ली। अंत में सन 1540 ईस्वी में वह महाराणा उदय सिंह द्वारा स्वयं परास्त हुआ। महाराणा उदय सिंह के समय में मीराबाई के किसी प्रकार के कष्ट पाने का पता नहीं चलता। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म साधारणतः सन 1532 ईस्वी में माना जाता है। इस हिसाब से गोस्वामी जी को अवस्था सन 1540 ईस्वी तक भी केवल 8 वर्ष की ही ठहरती है। इसके सिवाय गोस्वामी तुलसीदास जी को विशेष प्रसिद्धि उनकी मानस रचना के समय अर्थात सन 1574 ईस्वी के उपरांत ही हुई थी। ऐसी दशा में उन दिनों सुदूर चित्तौड़ निवासिनी मीराबाई के साथ उनका पत्र व्यवहार सन 1574 ईस्वी के प्रथम का होना कुछ जचता नहीं। इसी प्रकार सन 1573 ईस्वी तक का समय भी ऐसा है जब तक अकबर बादशाह की अवस्था उनके सन 1542 ईस्वी में उत्पन्न होने के कारण केवल 31 वर्ष की थी, तब तक कदाचित उससे और तानसेन से आपस में भेंट तक भी न हो पाई थी। ऐसी दशा में इन दोनों का एक साथ मीरा का दर्शन करने के लिए 1573 ईस्वी के पहले जाना संभव नहीं जान पड़ता। हो सकता है कि मीराबाई की मृत्यु सन 1546 ईस्वी के कुछ अनंतर ही हुई हो, किंतु उसे निश्चय करने के लिए अकबर एवं तानसेन वाली भेंट तथा गोस्वामी तुलसीदास के पत्र व्यवहार की कथा मात्र के अनुमान पर्याप्त नहीं। मीराबाई का जन्म काल भी इस भांति उनके पिता रत्न सिंह की अवस्था का अनुमान करते हुए सन 1500 ईस्वी के अनंतर का ही कहा जाना चाहिए। मद्रास के जी ए नटेशन कंपनी द्वारा प्रकाशित वल्लभाचार्य नामक छोटी सी पुस्तक के लेखक ने मीराबाई का जन्म समय सन 1505 ईस्वी, विवाह समय सन 1516 ईस्वी तथा मृत्यु काल सन 1550 ईस्वी बतलाया है। यह निश्चय उपयुक्त सब बातों पर विचार करते हुए बहुत उचित जान पड़ता है। केवल मृत्यु के सन का 10 वर्ष और भी पीछे लाना कदाचित अधिक उपयुक्त सिद्ध हो सकता है। मीराबाई की जीवन यात्रा अधिकतर कष्टमय ही रही। कहा जाता है कि इनकी माता इन्हें छोटी सी वय में ही छोड़कर परलोक सिधारी। यद्यपि इनके पिता जीवित थे, तथापि इनके पितामह राव दूदा जी ने स्नेहवश इन्हें चौकड़ी से बुलाकर अपने पास रखा। मीराबाई अपने पिता रत्न सिंह की इकलौती संतान थी, किंतु विविध लड़ाइयों में बहुधा भाग लेते रहने के कारण उन्हें भली भांति मीरा का पालन पोषण करने का पूर्ण अवकाश नहीं था। राव दूदा जी का सन 1915 ईस्वी में देहांत हो जाने पर इसी कारण मीराबाई की देखभाल उनके ज्येष्ठ पुत्र राव वीरम देव जी करने लगे। राव वीरम देव जी अपने पिता के मरने पर मेड़ते की गद्दी पर बैठे थे। उन्हीं के यत्नों के फल स्वरूप मीराबाई का विवाह सन 1516 ईस्वी में चित्तौड़ के महाराणा सांगा जी के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार भोजराज जी के साथ हुआ। राजकुमार भोजराज जी अपने पिता के जीवन काल में ही परलोक सिधारे। कुछ ही दिनों उपरांत सन 1527 ईस्वी में मीराबाई के पिता रत्न सिंह तथा उनके ससुर महाराणा सांगा जी की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अपनी 23 वर्ष की अवस्था के भीतर ही अपनी माता पितामह पति पिता तथा ससुर के स्वर्गवासी हो जाने के कारण मीराबाई हृदय में विरक्ति का भाव क्रमशः जागृत होता गया। साथ ही अपने पितामह परम वैष्णव राव दूदा जी के संसर्ग द्वारा आरोपित भक्ति भाव का बीज धीरे धीरे अंकुरित पल्लवित तथा विवर्धित होता हुआ अनुदित जड़ पकड़ता गया। मीराबाई अपने इष्ट देव श्री गिरधर लाल के अर्चन आराधन एवं भजन में ही पहले अपना समय बिताती रही, किंतु समयानुसार पीछे संतों का समागम भी होने लगा। इनके ससुर महाराणा सांगा जी के मरणोपरांत इनके देवर महाराणा रत्न सिंह विक्रमाजीत सिंह और उदय सिंह एक के पीछे दूसरे अपने पिता की गति पर बैठे और विक्रमाजीत तथा उदय सिंह के बीच कुछ दिनों तक महाराणा रायमल जी के राजकुमार पृथ्वीराज जी का अनौरस पुत्र बनवीर भी राजा बना रहा, किंतु इनकी ज्योढ़ी पर साधु संतों की बढ़ती हुई भीड़ देखकर अधिकतर महाराणा रत्न सिंह तथा विक्रमाजीत सिंह ही चिढ़ते थे। इन दोनों ने मीराबाई को भगवत भक्ति के आवेश में आकर अपनी कुल परंपरा के प्रतिकूल महल छोड़कर मंदिरों में जाने, वहां पर भजन गागाकर नृत्य करने तथा साधुओं के साथ सत्संग करने एवं उत्सव मनाने से रोकने की अनेक बार चेष्टा की, किंतु वे सदा विफल रहे। महाराणा विक्रमाजीत सिंह ने तो क्रोध में आकर यहाँ तक निश्चय कर लिया था कि हम मीराबाई को किसी न किसी प्रकार जान से मार डालेंगे। इसलिए एक बार उन्होंने अपने दीवान से सलाह से इनके पास ठाकुर जी के चरणामृत के बहाने किसी दयाराम पंडा के द्वारा विष का प्याला तक भेज दिया था, परंतु मीराबाई ने उसे हरि का नाम लेकर पी लिया। कहा जाता है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। इसी प्रकार उनके यहाँ सांप की पिटारी भेजने तथा उसके खोलने पर भीतर से हार के निकलने की भी कथाएं प्रचलित हैं। मीराबाई के कष्टों का वृतांत सुनकर उनके चाचा राव वीरम देव जी को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने इन्हें मेड़ते बुलाकर अपने यहाँ रखना चाहा, परंतु कुछ ही दिनों के अनंतर मीराबाई का मेड़ते में भी रहना कठिन हो गया। जोधपुर के राव मालदेव जी ने सन 1938 ईस्वी में राव वीरम देव जी से मेड़ता छीन लिया। उधर इसके कुछ ही पहले विक्रमाजीत सिंह को मारकर वनवीर चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठ चुका था। अतएव मैके तथा ससुराल की इन दोनों विपत्तियों ने मीराबाई के विरक्ति भाव को और भी दृढ़ बना दिया। इसके उपरांत उन्होंने अपनी जीवन यात्रा तीर्थाटन करके व्यतीत करने की ठान ली। मेड़ते से घूमती फिरती वह मथुरा तथा वृंदावन पहुंची। इन दोनों तीर्थ स्थानों पर कुछ समय बिता चुकने के अनंतर वे अंत में द्वारिका धाम चली गईं। द्वारिका जी में इनका विचार अपनी मृत्यु के दिन तक रहने का निश्चित हो गया और वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में वे नित्यशः भजन कीर्तन करने लगी। इधर सन 1540 ईस्वी में महाराणा विक्रमाजीत के छोटे भाई महाराणा उदय सिंह ने वनवीर को परास्त कर अपना राज्य वापस ले लिया। इसी प्रकार इनके 3 ही वर्षों के उपरांत सन 1543 ईस्वी में राव वीरम देव जी ने भी मेड़ते पर अपना अधिकार स्थापित फिर कर लिया। राज्यों के पुनरुद्धार के उपलक्ष्य में दोनों जगहों के राजाओं ने मीराबाई को द्वारका धाम से फिर बुला लाने की पूरी चेष्टा की। सन 1545 ईस्वी में राव वीरम देव जी के मरने के उपरांत उनके स्थान पर बैठने वाले उनके ज्येष्ठ पुत्र परम वैष्णव राव जयमल जी ने इनके लिए कुछ भी नहीं उठा रखा, किंतु मीराबाई अपने निश्चय पर अटल रही और अंत में वही शरीर का त्याग कर परम धाम सिधारी। मीराबाई की मृत्यु संभवतः सन 1560 ईस्वी के लगभग हुई थी। मीराबाई ने अपने पितामह राव दूदाजी के साथ रहकर अपनी बाल्यावस्था में ही अच्छी शिक्षा पाली थी और बाद में समय अनुसार उन्होंने काव्य कला तथा संगीत कला में अभ्यास करने का भी अवसर मिल गया था। चित्तौड़ का राजवंश संगीत शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान तथा साहित्यज्ञ महाराणा कुंभा के कारण विख्यात हो चुका था। इस कारण अपनी ससुराल में भी उन्हें अपनी योग्यता के विकास के लिए अच्छा वातावरण प्राप्त हो गया। उनके पति कुंवर भोजराज ने अपने जीवन काल में इनके उत्साह में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाई। उनके मरणोपरांत युवावस्था के कठोर वैधव्य सहन करने में उन्हें इन बातों से सहायता मिलने लगी। एक उच्च कुल की योग्य रमणी की भगवत भक्ति की ख्याति क्रमशः दूर दूर तक फैलती गई। मीराबाई के तीर्थाटन तथा द्वारिका निवास के समय तक उनके दर्शनों के लिए बहुत से लोग आने लगे। भारत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध भक्तों में मीराबाई की गणना होने लगी। उनकी मृत्यु के कदाचित 50-60 वर्ष भी न होने पाए होंगे कि उनका नाम भक्त कवि व्यास जी की बानी तथा नाभादास जी के भक्तमाल सदृश ग्रंथों में बड़े गौरव के साथ लिया जाने लगा। इनके प्रेम की महिमा में नाभादास जी ने लिखा है, सदृश गोपी ने प्रेम प्रगट कली जुगही दिखायो, निर अंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, दुष्टन दोष बिचारी मृत्यु को उधम कियो, बार न बाको भयो गरल अमृत ज्यो पियो, भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाही लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरिधर भजी। इसी प्रकार इसके कुछ ही वर्षों के अनंतर इनके विषय में ध्रुवदास जी ने भी अपनी प्रसिद्ध भक्त नामावली में लिखा है, लाज छाड़ी गिरधर भजी करी न कछु कुल कानी, सोई मीरा जग विदित प्रकट भक्ति की खानी, ललिता हु लई बोली कई तासो हो अति हेत, आनंद सो निरखत फिरे वृंदावन रस खेत, नृत्यत नुपुर बधी के नाचत ले करतार, विमल हियो भक्तनी मिली तृण सम गण्यो संसार, बंधुनी विष ताको दियो करी विचार चित्त आन, सो विष फिरी अमृत भयो तब लागे पछितान। इसके उपरांत लिखे जाने वाले ऐसे ग्रंथों में तो इनका नाम कदाचित ही छूटा हो। खंड 2। मीराबाई के द्वारा लिखे गए कई ग्रंथ सुनने में आते हैं, किंतु उनमें से कोई प्रकाशित हुआ नहीं दिखता। मुंशी देवी प्रसाद जी ने उनके लिखे ग्रंथों में से नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका तथा राग गोविंद नामक 3 को ही माना है, किंतु वे भी लिखते हैं कि मेरे देखने में केवल नरसिंह जी का मायरा ही आया है। इन उपर्युक्त 3 ग्रंथों को प्रायः सभी लेखक मीराबाई की रचना मानते हैं। इसके सिवाय मिश्र बंधु ने मीरा निर्मित सोरठ के पदों की भी चर्चा की है। राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ने लिखा है कि उसका बनाया हुआ मीराबाई का मलार नामक राग अब तक प्रचलित है। इसी प्रकार झवेरी महाशय ने मीराबाई के बनाए हुए बहुत से मधुर गरबा नामक गीतों का भी उल्लेख किया है, परंतु जान पड़ता है कि आज तक मीराबाई ने मीराबाई के सभी ग्रंथों का उनकी अनेक रचनाओं को लिपिबद्ध तक करने की कोई पूरी चेष्टा नहीं की गई। छोटे मोटे बाजारों संग्रहों में दिए गए कतिपय भजनों को छोड़कर जो सबसे अच्छा संग्रह आज तक इधर देखने में आया है वह प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित मीराबाई की शब्दावली है। इसमें चेतावनी का अंग में 4, उपदेश का अंग में 2, विरह व प्रेम का अंग में 63, 73, विनती और प्रार्थना का अंग में 15, मीराबाई व कुटुंबियों की कहा सुनी में 6, राग होली में 8, राग सावन में 10, राग सोरठ में 11 तथा मिश्रित अंग में 38 पद दिए गए हैं। अंग नामक ये विभाग कदाचित संपादक महाशय ने अपने यहाँ से प्रकाशित संत बानी पुस्तक माला की अन्य पुस्तकों में दिए गए ढंग पर ही किए हो। शब्दावली में कुल मिलाकर इस प्रकार 167 पद आए हैं, जिनमें से विरह और प्रेम का अंग वाले 12वें तथा 53वें एवं 71वें पद क्रमशः मिश्रित अंग वाले 11वें तथा 14वें एवं 74वें पदों से एकदम मिलते जुलते हैं। विरह और प्रेम का अंग वाले 6ठे तथा 42वें पद तो मानो एक ही हैं। इसके सिवाय अन्य कई पदों में भी बहुत सी पंक्तियां दूसरे पद वाली पंक्तियों के समान जान पड़ती हैं। इन उपर्युक्त द्विरिक्तियों के साथ ही इस संग्रह में एक बात यह भी खटकती है कि संपादक महाशय ने कदाचित इसमें ऐसे अनेक पद रखे हैं जिनका मीराबाई रचित होना सिद्ध नहीं हो सकता। मीराबाई के पदों की भी कबीर के पदों की भांति बड़ी दुर्दशा की गई है। जान पड़ता है जिस जिसने उन्हें गाया है उसने उन्हें अपने रंग में ही रंगने की चेष्टा की है। साथ ही अपने अपने विचारानुसार मीरा के भजनों के धर्रे पर स्वरचित कितने ही ऐसे पद प्रचलित कर दिए हैं जो बिना यत्न पूर्वक देखभाल किए मीरा रचित ही जान पड़ते हैं। संपादक महाशय अपने रथ संग्रह में 3-4 ऐसे पद दिए हैं जिसमें रैदास को मीरा द्वारा गुरु मान लेना लिखा हुआ है। फिर भी मीरा का जीवन चरित्र लिखते समय उन्होंने इस बात के प्रमाणित करने की कोई चेष्टा नहीं की है कि रैदास जी मीराबाई के प्रत्यक्ष गुरु थे। इसलिए जब ऐतिहासिक रूप से यह पता न चला जाए कि रैदास जी और मीराबाई का कभी सत्संग हुआ था, तब तक ऐसे पदों को मीरा रचित मान लेना आपत्तिजनक ही कहलाएगा। संपादक महाशय ने कदाचित इसी भ्रम के कारण अन्य बहुत से ऐसे पद भी दिए हैं जिनमें यद्यपि रैदास जी का नाम नहीं आता तथापि वे वास्तव में संत मत वाले किन्हीं साधुओं की ही कृतियां हैं। मीराबाई से उनसे कुछ भी संबंध नहीं। मीराबाई के रैदास आदि की भांति संत मतावलंबिनी होने का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं। मीराबाई के इष्ट देव श्री गिरिधर नामधारी कृष्ण भगवान थे और वे सगुण ही की उपासना करती थी। ईश्वर तथा संसार के संबंध में प्रकट किए गए उनके विचारों का परिचय आगे देंगे। मुंशी देवी प्रसाद जी ने काशी नगरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित अपने महिला मृदुवाणी नामक ग्रंथ में मीराबाई के केवल 25 भजनों का ही एक छोटा सा संग्रह दिया है और लिखा है कि हमने भजनों के प्राचीन संग्रह दरबार जोधपुर के पुस्तक प्रकाशन से मंगवाए और अन्य विद्वानों के पुस्तकालय भी देखे तो उनमें लिखे हुए मीराबाई के पदों में से जो यथार्थ पद उनके बनाए हुए हमको जान पड़े वे हम यहाँ लिखते हैं। इन पदों में से केवल 15 पद ऐसे हैं जो उपर्युक्त शब्दावली में आए हैं। इस संग्रह के शेष 10 पद नवीन हैं और वे शब्दावली के अंतर्गत नहीं आ पाए हैं। सामग्री के अपूर्ण रह जाने के कारण मीराबाई के तात्विक सिद्धांत का पता लगाना बहुत कठिन है, परंतु प्रस्तुत असली पदों पर विचार करने से जान पड़ता है कि मीराबाई के दार्शनिक विचारों की वानगी उनके निम्नलिखित पद में मिल सकती है। भजी मन चरण कमल अविनाशी, जे ताई दी से धरनी गन गगन बीच, ते ताई सब उठ जाती। कहा भयो तीरथ व्रत कीने, कहा लिए करवत कासी, इस देही का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। या संसार चहर की बाजी, सांझ पड़या उड़ जासी, कहा भयो है भगवा पन्हया, घर तज भय सन्यासी। जोगी हो जुगती नहीं जानी, उलट जन्म फिर आसी, अरज करो अबला कर जोरे, श्याम तुम्हारी दासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी। मीरा ने इस पद द्वारा अपने इष्ट देव प्रभु गिरिधर नागर को अविनाशी तथा उनकी उसके सामने संपूर्ण दृश्यमान संसार की उठ जाने वाला अनित्य ठहराया है। संसार वास्तव में आसार है, क्योंकि जिस शरीर को पाकर हमें अभिमान होता है वह भी अंत को माटी में ही मिल जाने वाला है। योगी भी अपनी साधना के निष्फल होने पर उलट अर्थात लौटकर पुनर्जन्म धारण करते हैं। सांसारी मनुष्य अपने जीवन काल में भ्रमवश निश्चिंत पड़े रहते हैं, यह नहीं समझते कि उनका सारा व्यवहार अथवा बिहार चहर की बाजी अर्थात चिड़ियों के खेल के समान है, जो संध्या का सामने आते ही चिड़ियों के बसेरा पर चले जाने के कारण बंद हो जाया करता है। इस नाशवान जगत के आवागमन से मुक्ति पाने के लिए मीरा के विचार में तीर्थ व्रत करना, काशी पर्वत लेना तथा भगवा पहनकर अपना घर बार छोड़कर सन्यासी हो जाना बेकार है। इसका उपाय केवल यही है कि अपनी निर्बलता एवं असहायता पर ध्यान देते हुए एक दास की भांति भगवान के प्रति आत्मसमर्पण कर दें और उनके चरण कमलों का भजन करें। जम की फांसी अथवा पुनर्जन्म एवं कर्म बंधन को प्रसन्न होने पर भगवान ही काट सकते हैं। इसी भगवान को मीराबाई ने प्रभु गिरिधर नागर, हरि, श्याम, गोपाल, नंदलाल, राम तथा स्वामी आदि कई नामों से पुकारा है। यही मीरा के सर्वस्व गिरिधर गोपाल हैं, जिनके सिवाय संसार में उनका दूसरा कोई नहीं है। इनके सामने तात, मात, भ्रात, बंधु तक भी अपने ही नहीं, और इन्हीं के लिए मीरा ने कुल की कहानी छोड़ दी और संतों के पास बैठ बैठ कर लोक लज्जा तक को तिलांजलि दे दिया। वास्तव में इन इष्टदेव का रूप भी वैसा है। एक बार जहाँ दृष्टि पड़ी कि फिर लोक या परलोक कुछ भी नहीं सुहाता, इसके वर्णन में मीरा ने कहा है, मोरन की चंद्रकला तीस मुकुट सोहे, केसर को तिलक भाल तीन लोक मोहे, कुंडल की छलकन कपोलन पर छाई, मनोमीन सरवर तजी मकर मिलन आई, कुटिल भ्रिकुटी तिलक भाल चितवन में टोना, खंजन अरु मधुपमनी भूले मृग छोना, सुंदर अति नाशिका सुग्रीव तीन रेखा, नटवर प्रभु भेष धरे रूप अति विशेखा, अधर बिंब अरुण न्यायन मधुर मंद हासी, दसन दमक दाढ़ी मदुति चमके चपलासी, क्षुद्र घंट किकिनी अनूप धुनि सुहाई, गिरधर के अंग अंग मीरा बलि जाई। ऐसे इष्ट देव से मीरा का प्रेम हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसे बड़े घर ताली लगने अर्थात परम पुरुष से लगन हो जाने के कारण ही मीरा का चित्त जगत की कामनाओं से हट गया है। उनका मन छिछले तालाब या गड्ढे के पानी अथवा गंगा यमुना तक में भी नहीं लग सकता, अब ये समुद्र से ही जाकर मिल रही है। जब स्वयं दरबार से ही बात करने की ठहर गई हो तो फिर हाली मवाली अथवा अधिकारियों की सहायता की क्या आवश्यकता हो सकती है। परंतु प्रेम भक्ति का रास्ता विचित्र होता है, यह न्यारो है और स्वयं प्रीति दुखड़ारी मूल है। ऐसी दशा में भगवान से प्रेम का निर्वाह कर लेना और भी कठिन बात है। चारों तरफ से गली बंद रहती है और वहाँ तक पहुँचने की राह तक रब पीली है, पैर ही नहीं ठहरते। बड़े यत्नों के उपरांत सोच सोच कर रखे जाने पर भी वे डिगने लगते हैं। यह बात यह है कि हृदय का मैल जब तक न छूट जाए तब तक भक्ति अथवा प्रेम हो ही कैसे सकता है। काम चांडाल कुत्ते की भांति लोभ की डोरी में हमें बांधता रहता है, क्रोध की कसाई की भांति हमार घट में निवास करता है तथा अभिमान एक ऐसे कीड़े की रचना कर देता है जिस पर प्रेम रूपी जल ठहरने ही नहीं पाता और अंतर्यामी से भी कपट करने की बाण पर पड़ जाती है। हाँ, मीरा के विषय में यह बात नहीं है। यहाँ तो अनुराग पूर्व जन्म का है और दोनों दिल ऐसे मिल गए हैं जैसे सोना और सुहागा मिल जाए, अथवा जैसे चंद्रमा और चकोर एक दूसरे से बंधे रहते हैं। मीरा का कहना है कि जिस प्रकार एक अमली अर्थात नशे वाले के लिए उसका अम्ल आधार हुआ करता है, उसी प्रकार रमैया मेरा प्राणधार है। कोई चाहे कोई निंदा करे अथवा स्तुति करे, मुझे सिवाय उसके कोई भी वस्तु पसंद नहीं। अब पक्का रंग चढ़ गया और यह अमल किसी प्रकार के उपाय से छूटने वाला नहीं। दूसरों के प्रियतम अथवा पति परदेशों में रहा करते हैं, जहां उन्हें बहुधा पत्रादि भेजने की आवश्यकता पड़ा करती है, परंतु मेरा पति सदा मेरे हृदय में ही निवास करता है और उसके साथ में दिन रात रहस्यमयी बातें किया करती हूँ। उसकी सूरत मेरे नयन में है, जिसका ध्यान नित्यशः करती हुई सर्वदा आनंद में मग्न रहा करती हूँ और प्रीति की खुमारी सांप के विष के समान चढ़ा करती है। कभी कभी तो मेरी इच्छा ऐसी होती है, मैं तो म्याहरा रमैया ने देखिया करूरी, तोरो ही उमरण तेरो ही सुमरण तेरो ही ध्यान धरूरी, जहाँ जहाँ पाँव धरु धरनी पर तहाँ तहाँ नीरत करूरी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण लिपट परूरी, अथवा गोहने गोपाल फिरू ऐसी आवत मन में, अवलोकत बारिज बदन बिबस भई तन में, मुरली कर लकुट लेऊ पीत बसन धारू, आछी गोप भेष मुकुट गोधन संग चारू, हम भई गुल कामलता वृंदावन रैना, पशु पक्षी मरकट मुनि श्रवण श्रवण सुनत बैना इत्यादि। अपने प्रियतम के पास पत्र लिखते समय की दशा के विषय में जो मीरा ने पद लिखा है वह बहुत ही उत्तम है। प्रेम रस से ओतप्रोत प्रेमी की दशा बड़ी विचित्र है। मीराबाई लिखती हैं, पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखिया न जाई कलम धरत मेरो कर कंपत, हृदो रहयो गहराई, बात कहूं मोही बात न आवे नैन रहे झुरराई, किस विध चरण कमल में गही हूँ सबही अंग थर राई, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर सबही दुख बिसराई। वास्तव में यह प्रेम की स्तब्धावस्था है, जबकि प्रेमी एकदम जड़वत मूक एवं निश्चल तक हो जाता है और लाख मानसिक यत्न भी उसकी निष्क्रियता दूर नहीं कर पाते। मीरा ने इसी प्रकार प्रेम की तन्मयावस्था के वर्णन में भी किसी ग्वालिन की दशा का परिचय दिया है। कोई श्याम मनोहर ल्योरी सिर धरे मटकिया डोले, दधि को नाव बिसर गई ग्वालन हरी ल्यो बोले, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चेरी भई बिन मोले, कृष्ण रूप छकी है ग्वालिन और ही औरे बोले। मीराबाई एक बड़े घराने की लड़की और उससे भी प्रतिष्ठित कुल की रमणी थी, इस कारण वंश परंपरा के प्रतिकूल उनका राह पकड़ना देख उनकी ओर लोग आश्चर्य की दृष्टि से देखने तथा उन्हें अनेक प्रकार से समझने लगे थे। बार बार उनकी कुल मर्यादा के साथ साधु सुलभ जीवन की तुलना करते हुए वे उन्हें अपनी लोक लज्जा की रक्षा करने का उपदेश देते तथा उन्हें भक्ति मार्ग से छुड़ाना चाहते थे, किंतु मीरा का हट अपूर्व था। एक बार निश्चय कर लेने पर वे सच्ची राजपूत बाला की भांति अपने आदर्श का त्याग करने में असमर्थ थी, इसीलिए उन्हें अपने पदों में अनेक बार अपनी दृढ़ता का प्रसंग लाना पड़ा है। मेरे गिरिधर गोपाल वाले पद एवं अन्य और पदों में भी उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जो होना हो होता रहे, अब तो कोई बात छिपी नहीं, बट बीज की भांति चारों ओर फैल चुकी है और लोग जान भी गए हैं। प्रीति करते समय यदि चाहती तो मैं हट भी सकती थी, किंतु अब मझधार में आ चुकने पर सोच विचार करने का कोई अवसर नहीं रह गया। अब कलाबाज नट की भांति एक बार जहां चूके कि फिर कोई ठौर नहीं मिल सकता। मान अपमान दोनों को सिर से उतार कर पिटक पटक दिया और प्रकट रूप में नाचते लगी। अब तो मीरा गिरिधर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी। इसीलिए अपना निश्चय यह है, भली कहो कोई बुरी कहो, मैं सब लई शीश चढ़ाए। मीरा के प्रेम में इसी प्रकार आत्मसमर्पण का भाव भी विद्यमान है। इस विषय का नीचे लिखा पद गुजराती में भी बहुत प्रसिद्ध है। प्रेमिनी 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 रे, मन लागी कटारी प्रेमिनी रे, जल जमुना मा भरवा गया ता, हतो गागार गागर माथे हेमनी रे, काचे ते तातणे हरिजे ये बाधी, जेम खेचे तेम तेमनी रे। मीरा को प्रभु गिरधर नागर सांवली सूरत शुभ एमनी रे, जिसमें काचे के तातणे हरिजे ये बांधी, जेम खेचे तेम तेमनी रे, ये पंक्तियां विशेष महत्व की हैं। प्रेम पात्री ने प्रेमी को केवल कच्चे धागे में ही कठपुतली की भांति बांध रखा है और जैसे चाहे वैसे खींच कर नचाता है। मीराबाई के विरह संबंधी पद भी अधिकतर ऐसे हैं, जिनसे मीरा का अपने इष्ट देव को पति वत मानकर उनसे व्यवहार करना सिद्ध होता है। मीरा का कहना है, बड़े दुख की बात है कि हरि ने मेरी बात ही न पूछी, सारी रात न तो पर्दा हटाया और न मुंह से कुछ बोले ही, स्वप्न में दर्शन दिए और आंखें खुलते ही जाते हुए दिख पड़े। मैं अब रह रह कर पछताती हूँ, मैं प्रेम की दीवारी बनी फिरती हूँ और मेरा दर्द कोई पहचान नहीं पाता। बात यह है कि घायल की दशा या तो घायल ही बतला सकता है अथवा उसे घायल करने वाला जानता है। दर्द से बेचैन होकर बन बन डोलती फिरती हूँ, परंतु कोई वैद्य नहीं मिलता। बिना सांवलिया के मीरा की पीर नहीं मिट सकती, इस कारण उसके मिलन तक किसी प्रकार से कल नहीं। शरीर छिण होता जा रहा है और मुख से बार बार पिय पिय की आवाज निकलती रहती है। विरह की पीड़ा भीतर सता रही है और वह इसे जान नहीं पाता। चेतक जैसे चेतक बादल के लिए और मछली पानी के लिए घबराती है, उसी प्रकार व्याकुल होने के कारण मेरी भी बुद्ध शुद्ध नष्ट हो गई है। अपनी व्यवस्था के विषय में मीरा कहती है, मैं विरहिन बैठो जागू, जगत सब सोवेरी आली, विरहिन बैठो बैठी रंग महल में, मोतियन की लड़ पाओ पोवे, एक बिरहिन हम ऐसी देखी अश्वन की माला पोवे, तारा गिण गिण रैण बिहानी, सुख की घड़ी कब आवे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिलके बिछड़ न जावे। मीरा ने सबसे स्पष्ट भारियो चित्त उद्गार नीचे लिखे उपालंबन द्वारा व्यक्त किया है, श्याम महा सुएणो डोलो रे, औरन सु खेले धमार, महान सु भू मुखहू न बोलो बोले हो श्याम, महारो गलिया ना फिरे, वाके अंगन आंगन डोल हो, म्यारी आंगुली न छुए, बाकी बहिया मोरे हो, म्यारे अचरा न छुए, बाको घूंघट खोले हो, मीरा के प्रभु सावरो रंग रसिया डोले हो श्याम। मीराबाई ने बहुत से पद श्री कृष्ण की दधि लीला, वंशी लीला, पनघट लीला, चीर हरण लीला आदि विविध लीलाओं के विषय में भी लिखे हैं। उनकी सुंदरता और मधुरता से प्रभावित होकर मीरा की अपूर्व जन्म का कौल, पूर्व जन्म की प्रीति आदि पुनरुक्तियों पर विचार करते हुए लोग बहुधा उन्हें गोपियों का अवतार कहा करते हैं। यह भी प्रसिद्ध है कि अपनी बाल्यावस्था में मीरा ने श्री कृष्ण की मूर्ति को देखकर पूछा था, कि ये कौन है, तो किसी ने हंसी में उस मूर्ति को उनका दूल्हा कह दिया था और तभी से मीरा ने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। जो हो, मीरा की भक्ति में दाम्पत्य प्रेम का पुट प्रायः प्रत्येक स्थल पर वर्तमान है। मीराबाई ने के बहुत पद ऐसे भी मिलते हैं जिनमें उन्होंने अपने कुटुंबियों द्वारा दिए गए कष्टों का भी थोड़ा बहुत उल्लेख किया है। पता नहीं ऐसे पदों में से कौन कौन स्वचरित हैं और कौन से प्रक्षिप्त। मुंशी देवी प्रसाद द्वारा मीराबाई रचित माना हुआ एक पद नीचे है। मीरा अपने देवर महाराणा से कहती है, मीरा लागो रंग हरी, सब रंग अटकी परी अटक पड़ी, गिरधर गास्या सती न होस्या, मन बसिया धन नामी, जेठ बहु को ना तो ना ही तुम सेवक हम स्वामी, छाया तिलक मनोहर बानी सोल संतोष सिंगारो, और कछु ना भावे हो राणा वो गूर ज्ञान हमारो, गिरधर घेणी कुटुंबी गिरधर, मात पिता सुत भाई थे थारे महे महारे, हो राणा गावे मीरा बाई। इससे प्रकट होता है कि मीरा ने अपने को गिरधर के ऊपर न्यौछावर करके किस प्रकार अपना मन विरक्त कर लिया था। मीरा बाई के पदों में उपर्युक्त बातों के सिवाय काव्य तथा संगीत की सामग्री भी प्रचुर मात्रा में मिलेगी। इनका प्रायः प्रत्येक पद ऐसे हृदय स्थल की अव्यक्त भाव से भरा हुआ है जो बिना किसी प्रयास के ही अपने स्थान से स्वभावतः निकल पड़े हैं। इसी कारण उनका रूप हठात संगीतमय बन गया है। इनकी रचना में जहाँ कहीं प्रकृति काव्य के चिन्ह मिलते हैं, वे भी श्रम साध्य नहीं जान पड़ते हैं। मीराबाई पहले विशुद्ध प्रेम में मग्न रहने वाली भक्ति मार्गावलंबी एक नारी थी। तब कहीं काव्य अथवा संगीत की रचयित्री अथवा और कुछ है। इनके अधिकांश पद गोस्वामी तुलसीदास के समान स्वांतः सुखाए लिखे हुए जान पड़ते हैं। इनकी कविता रसखान की भांति बाँचने की नहीं प्रत्युत गाने की चीज है। इनकी रचनाओं को पद अथवा गीत काव्य कहना चाहिए। मेरे गिरिधर गोपाल जबते मोहि नंद नंदन कई आदि कई पदों के सिवाय जिनके कुछ अंश ऊपर आ चुके हैं और भी कुछ उत्तम पदों को हम नीचे उद्धृत करते हैं। पहला, सखी री लाज बैरन भई, श्री लाल गोपाल के संग काहे नहीं गई, कठिन क्रूर अक्रूर आयो साज रथ कह नई, रथ चढ़ाए गोपाल लेगो हाथ मींजत रई, कठिन छाती श्याम बिछुरत विरह ते तन तई, दासी मीरा लाल गिरिधर बिखर क्यों न गई। दूसरा, रंग भरी रंग भरी रंग सु भरी री, होली आई प्यारी रंग सु भरी री, उड़त गुलाल लाल भय बादल पिचकारिन की लगी झरी री, चोआ चंदन और अरगजा केसर गागर भरी धरी री, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर चेरी होए पायन में परी री। तीसरा, बादल देख झरी हो श्याम में बादल देख झरी, काली पीली घटा उमंगी बरसियो एक घरी, जित जाऊं तित पानी ही पानी हुई सब भोम हरी, जाका पिव पर देश बसत है भीजे बार खरी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर कीजियो प्रीति खरी। मीरा का स्थान संसार के प्रसिद्ध स्त्री कवियों में बहुत ऊंचा है। मीरा ने कवि होकर कदाचित कभी लिखने का विचार नहीं किया, न प्राकृत कवियों की भांति कवि सुलभ प्रतिष्ठा की प्राप्ति उनका कभी ध्येय रहा। उन्होंने पदों की रचना इसलिए की कि वे बिना ऐसा किए रह ही नहीं सकती थी। मीरा के लिए भी हम वही कह सकते हैं जो ग्रीस देश की परम प्रसिद्ध स्त्री कवि सैफो ईशा की पूर्व छठी सदी के लिए किसी ने कहा है, गीत की वेदना और आनंद में मत, प्रेम की पुजारिन, प्रेम के आनंद और वेदना में मत, गीत की पुजारिन। और ये शब्द मीरा के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं।